आपने सुना होगा, गोपियों ने हर प्रयत्न करने के बाद जब प्रभु उनके समक्ष नहीं आए तो गोपियों ने क्या किया, गीत गाया, जो गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। और गीत गाते गाते गीत के मध्य में भगवान प्रकट हो गए, गौरांगा। तो आइए हम लोग भागवत में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुनुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि हरि प्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र धर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुदीरे
ततो जय मुदीरे
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके
भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्णा कृष्ण हरे हरे
हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय दस श्लोक संख्या 67, 68, 69, 70 चार श्लोक
जी
प्रो पहला निकाल दो
67
शरम बोलिएगा हमारे पीछे सब लोग नहीं निकल रहा शरम धनुषी संध्याया
धनुषी संध्याया
मुहूर्ते विजितेश्वर
शरम
तदाहतेन दुर्वेद्य
तदाहतेन दुर्वेद्य
हरोथ त्रिपुरो नृप
त्रिपुरो
शरम धनुषी संध्याय
शरम धनुषी संध्याय
मुहूर्ते विजितेश्वर
विजितेश्वर
तदाहतेन दुर्वेद्य हरोथ
त्रिपुरो नृप त्रिपुरो नृप शरम धनुषी संध्याय मूर्ते विजिते स्वरा दधाते न दुर्वेद्या हरोथ त्रिपुरो निप शरम धनुषि संधाय मूर्ते विजिते स्वरा दधाते न दुर्वेद्या मूर्ते विजितेश्वर ददाते न दुर्वेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप शरम सनुषि संधाय मूर्ते विजितेश्वर ददाते न दुर्वेद्य
शरम बाणों को धनुषी धनुष्वर संधाय एक साथ जोड़कर मुहूर्ते अभी भी दोपहर के समय ईश्वर भगवान शिव ददाह अग्नि लगा दी तेना उन बाणों के द्वारा दुर्वेद्य जिनको भेद पाना जिसको भेद पाना दुष्कर हो हरा शिव जी ने, अतः इस प्रकार से त्रिपुर असुरों के तीनों निवास स्थान नृप, हे राजा युधिष्ठिर। अनुवाद, हे राजा, यद्यपि परम शक्तिशाली शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और दोपहर के समय असुरों के तीनों आवासों में अग्नि लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर से महात्मा नारद जी। नारद जी, इसको समझने के लिए हमें पिछले श्लोक से ज्यादा समझ सकते हैं इस भाव को। मैं दानव ने कहा, जो अपने दूसरों के अथवा दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित कर दिया गया है, उसे कोई भी कहीं भी मिटा नहीं सकता, चाहे वह देवता, असुर, मनुष्य, अन्य कोई क्यों न हो। बड़ा शक्तिशाली राक्षस था मैदानो, और शक्ति होने के कारण असुर लोग कभी कभी अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। यदि किसी अन्य अधिकारी व्यक्ति के पास कोई बहुमूल्य वस्तु चला जाए और ऐसा ही आ जाए तो उसकी महिमा कम समझते हैं लोग। असुर भी कभी कभी धर्म की बात करते हैं, वो भी धार्मिक होते हैं लेकिन अपने धर्म में वो परिपूर्ण होते हैं। यहाँ भगवान शिव के विषय में कहते हैं कि भगवान शिव ने, भगवान शिव का जीवन चरित्र देखिए। भगवान शिव निरंतर प्रभु के गीत गाते रहते हैं, उनका दो ही काम है। किसी ने पूछा उनसे कि आपका दिनचर्या क्या है, आप क्या क्या करते हो, तो भगवान शिव ने कहा कि तव नाम जपामि नमामि हरि। मैं केवल प्रभु के नामों का जप करता हूं और जहां प्रभु का दर्शन होता है वहां प्रणाम करता हूं। दो ही सूत्र है जीवन में, भगवान को प्रणाम करना और भगवान के गीत को गाना, कीर्तन करना, उनके गुणगान करना, यही वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव का चिन्ह धारण करके, वैष्णव बन करके यदि इस जिह्वा से अनर्गल बात हम करते हैं, भगवान शिव इसे पसंद नहीं करते। भगवान शिव परम वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथाशंभु, वैष्णव के आचार्य हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमें संसारिक बातों में ज्यादा नहीं रहना, ज्यादा नहीं मतलब रहना ही नहीं चाहिए। यदि आप हम सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो जिह्वा से केवल प्रभु का नाम जप किया जाए। भगवान शिव का जीवन देखिए, गला में विष है, भाल यानी माथे पर चंद्रमा है, गले में सर्प भी है, और आप हम सब जैसे गृहस्थ भी हैं लेकिन उनका कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, इतने विरक्त हैं। वो संसार को इतने समझ चुके हैं कि संसार में कुछ भी नहीं है। किसी भक्त से, भक्तों की बात करता हूं, किसी भक्त से पूछिए आप कैसे हैं, तो बड़े लंबा श्वास ले कहते ठीक है। बताओ जब भक्तों का ये हाल है तो जो बाहर में रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा, कितने परेशान हैं। वास्तव में हम लोग बहुत गलत जगह पर आए हैं। ये जो स्थान है, भगवान ने गीता में कहा है दुख हाल है, दुख का भंडार है ये। आप ये नहीं कह सकते कि जीवन में कौन सा दुख नहीं है, गिनती नहीं गिन सकते हैं। दुखालय है, अशाश्वत है, यहाँ का हर वस्तु अनित्य है और यही हम सुख ढूंढना चाहते हैं, ये बहुत गलत है ये सब। भगवान शिव देखिए श्मशान वास करते हैं। एक बार भूत प्रेत, अभूत प्रेत यदि गांव में चला जाए तो किसी घर में घुस जाए, गांव में घूमे भूत प्रेत, तो क्या करते हैं लोग, झाड़ा पोछा लगवा करके उसको भगा देते हैं, वैद्य बुला करके भगा देते हैं। एक बार ये सभी भूत भागते भागते भगवान शिव के पास गए। पशुपति है ना, हे प्रभु पाहि माम पाहि माम, क्या हुआ? बोले कि प्रभु अपने पास अपने घर में कोई रखना ही नहीं चाहता है, हम लोगों को देखना ही पसंद नहीं करता है कोई। भगवान शिव ने कहा कि सभी मेरे पास आ जाओ, सब मेरे गण हो तुम। यानी भूतनाथ भूतों को भी अपने पास रखते हैं। भगवान शिव की जब शादी विवाह हो रहा था तो अब एक बार शादी हुआ था सती जी से, वो किसी प्रकार से निवृत्ति हुई उसका। फिर हिमालय पुत्री पार्वती जी से नारद जी ने शादी तय कराया। सभी देवताओं ने भी उत्साहित किया, हाँ हाँ प्रभु आप पुनः विवाह कीजिए, हम आपके साथ में हैं। भगवान शिव जानते थे कि ये कितने साथ में रहेंगे, ये नहीं रह सकते, ये अपना काम साधने के लिए सब कर रहे हैं ये। प्रभु हम आपके साथ में। भगवान शिव ने कहा चलो। अंत में प्रभु ने भी कहा कि गृहस्थ आश्रम में जाओ। देखिए शंकर जी सन्यासी ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, भगवान ने उन्हें गृहस्थ बनाया, और नारद जी गृहस्थ बनना चाहते थे, उनको सन्यासी बनाया। बेशक श्राप मिला उनको, लेकिन उनको कहा नहीं तुम ब्रह्मचारी रहो, तुम्हें प्रचार करना है सब। भगवान शिव का विवाह हुआ, विवाह में जब तैयारी हुई तो अब देवता लोग भगवान शिव के साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है शादी में। अब भाई कोई डोली हो, कोई बढ़िया सवारी हो तो शिव के साथ चलने में आनंद भी आए थोड़ा बहुत। अब बैल की सवारी है, सभी देवता लोग किनारे किनारे चल रहे हैं। बाबा ने जोर से आवाज लगाई अपने गणों को, जोर से आवाज लगाई, और आवाज लगाते ही जहां जहां भूत थे, जहां जहां प्रेत थे, सभी इकट्ठे हो गए। अब उनकी आवाज भी अलग ढंग से होता है, किसी का पैर पीछे मुड़ा हुआ है, किसी का गर्दन पीछे मुड़ा है, किसी के टांग नहीं है, किसी के सर घूम रहा है। अब मालिक बुलाए हैं, प्रभु बुलाए हैं, सभी भूत इकट्ठे हो गए वहां पर। अब भूत को देख करके सभी देवता भाग गए वहां से। अब जिस गांव से गुजरे, जिस गांव, एक जगह का भूत थोड़ी आए, सभी जगह का भूत आए। बनारस के भी भूत आए, वो भूत बोल रहे हैं राम राम, वो भूत बोल रहे हैं राम राम, शिव जी के गण है ना सब, राम राम। अयोध्या के भूत आए सीताराम जी, वृंदावन के भूत आए राधे राधे, सब बोल रहे हैं, वो भूत बोल रहे हैं। विदेश के भी भूत आए, हर हर महादेव बोल रहे हैं सब, भारत के भूत, विदेश के भूत आए तो बोले हाय हाय, वो बोलने लगे सब। और जिस गांव में भगवान शिव की सवारी जाए, उस गांव से सभी गांव वाले बाहर और भूत सब अंदर। ये भगवान शिव का जीवन चरित्र है, लेकिन निरंतर प्रभु के जिह्वा पर नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। नारद जी तो सब जानते थे, जब पार्वती जी के लिए वर बन करके गए और उनकी माता ने जब देखा तो हाथ में सोने का थाली था, आरती उतारनी थी, पार्वती जी के पति को देख करके माता सुनैना वहीं गिर पड़ी, मूर्छा आ गया कि हमारे सुशील इतना सुंदर भक्त पुत्री के लिए ऐसा वर। नारद जी ने जैसे जैसे समझा करके ठीक किया, ऐसे तो कपूर गौरम भगवान शिव बहुत गोरे हैं, बहुत सुंदर हैं, बैल की सवारी करते हैं, चंद्रमा निरंतर उनके माथे पर रहता है, गले में विष है, लेकिन भगवान शिव बोलते हैं तो बहुत सुंदर बोलते हैं। हमारा गला बहुत सुंदर है, लेकिन हम सब बोलते हैं तो जहर के जैसा बोलते हैं, बताओ कितना अंतर है। ठीक आवाज नहीं है हम लोगों की भाई, हम जो खाएंगे वैसा ही तो ढेकार आएगा, जो अंदर हम सोच रखे हैं जैसा संचित करते हैं वैसा ही तो आवाज निकलेगी ना, ऐसा सुंदर बोलना चाहिए। इन आचार्यों से हमें सीखना चाहिए कि बोलने की शैली क्या है, कैसे बोलना चाहिए। सुंदर बोलने में कौन सा पैसा लगता है, फ्री तो है सब चीज। तो यहां पर भगवान शिव के विषय में वर्णन करते हैं, भगवान शिव निरंतर मीठे स्वर से प्रभु का नाम लेते हैं, गला विष से भरा हुआ है, गला नीला पड़ गया है विष से, फिर भी बहुत सुंदर बोलते हैं। इसे शिक्षा लेना है कि हमें भी बहुत मधुर और बहुत सुंदर वार्तालाप करना चाहिए आपस में, चाहे पत्नी से संभाषण होता हो या पुत्र से होता हो या किसी भक्त से होता हो या मंदिर में हो, कहीं भी हो, अपनी मीठी आवाज का परित्याग कभी न करें, ये शिक्षा है। देवता लोग जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें देवता दानव दोनों कर रहे थे, मन में इच्छा थी कि इसमें से अमृत निकले, हम पी करके दोनों बलवान होंगे, खूब पहलवान होंगे। विष निकल अमृत निकलने से पहले विष निकल गया, जब विष निकला तो सभी डर गए, भयभीत हो गए, देवता लोग भी डर गए, सब डर गए, असुर भी डर गए, सभी लोग भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के पास जाकर के कहा कि आप तो मालिक हैं, विषधर हैं, विष को गले में लगा करके रखते हैं, सर्प आपके सब श्रृंगार हैं, गले में भी हार के बदले सर्प हैं, कानों में कुंडल के बदले भी सर्प हैं, माथे में भी सर्प लपटे हुए हैं, आप इसको ठीक कर सकते हैं प्रभु, यदि आप इस विष पान कर लें तो जगत की रक्षा हो सकती है। भगवान शिव तो संहार करने के लिए अवतार हुआ था, भगवान विष्णु पोषण करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं ब्रह्मा जी, ये देखिए ब्रह्मा जी के डिजाइनिंग बैठे हैं, सब 150 बैठे हो ना आप यहाँ पर, देखो किसी का चेहरा एक में मिलता है, ये ब्रह्मा जी के डिजाइनिंग है, ये नाक वही है सबका, कान वही है, जिह्वा दांत सब वही है, लेकिन किसी का चेहरा एक में नहीं मिलता है। आप कह सकते हो कि यदि 2-4, 10-20-50 आदमी हो तो 1-2 आदमी का चेहरा मिल सकता है, चेहरा मिल जाए हो सकता है, लेकिन फिर उसका दिमाग नहीं मिलेगा, बुद्धि नहीं मिलेगा आपस में। बड़ी बारीकी से सृष्टि की गई है, बहुत सुंदर ढंग से सृष्टि को भगवान ने सजाया है। शिव जी ने सोचा मन में कि देवता लोग कितने स्वार्थी हैं, पार्वती जी भी वही हैं, अब पत्नी के सामने कोई कहे कि पतिदेव को कि तुम 20 पी लो तो पत्नी को कैसा लगेगा, बड़ा बुरा लगेगा। पार्वती जी बहुत टेढ़ी नजर से देख रही थी सबको, लेकिन भगवान शिव हैं, समर्थ हैं, भगवान भी जानते थे, भगवान ने आज्ञा किया और भगवान शिव ने विष को हाथ में लिया और विष को हाथ में लेकर के भगवान शिव ने क्या किया कि जोर से मुंह खोला। कैसे मुंह खोला? रा बोलो, मुंह खुला रहने दो। रा कहने से मुंह खुल जाता है, रा खुला है ना, रा रखो, हम पिला रहे हैं आप लोगों को, रा रखो, रा। अब भगवान शिव ने विष पी लिया, बोले मुंह बंद हो गया। रा कह करके मुंह खोला, विष पी करके मुंह को बंद किया, क्या हुआ? राम, यानी राम करके विष पी लिया प्रभु ने। अब जब विष पी लिया तो बड़ा कड़ा था, बड़ा कड़वा विष था, गला जलने लगा बिल्कुल। हमारे प्रभु ने सोचा कि यदि इस विष को हम अंदर डालते हैं तो हमारे प्रभु परमात्मा के रूप में बैठे हैं हृदय में, उनको बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा, क्या करें, इस विष को बाहर फेंकता हूं तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। भगवान शिव समर्थ है, भगवान शिव ने गले में ही रोक लिया, विष के प्रभाव से गला नीला पड़ गया लेकिन गले से नीचे और बाहर नहीं जाने दिया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ महादेव भी है, इसलिए नीलकंठ महादेव उन्हें कहते हैं। बोल नीलकंठ महादेव शिव भगवान की, नहीं बोलने वालों की, सोने वालों के भी, कुछ लोग सो रहे हैं, बताओ, भगवान शिव यहां बात बता रहे हैं सब। तो हम लोग भगवान शिव ने, क्षमा कीजिए, लगता है कि ज्यादा लाला या कैसे किया तुम लोगों ने। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम। अब शिव के शक्ति को समझने के लिए आपको एक श्लोक पीछे आना होगा। नारद मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात कृष्ण ने शिव जी को अपनी निजी शक्ति से, शिव जी को अपने निजी शक्ति से, कौन? भगवान, एकल ईश्वर आर सभवृत। ईश्वर, देखो ईश्वर एक है, बाकी सभी सेवक के रूप में, दास के रूप में है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही समझना है, सुप्रीम भगवान कृष्ण ही है और कोई नहीं है। भगवान शिव न जीव है न भगवान है, भगवान शिव कभी मृत्यु नहीं होती है, ब्रह्मा जी जीव में आते हैं। और यहाँ विष्णु का जो, भगवान का जो शब्द आया है, भगवान तो परम भगवान है, उन पर किसी भी काल का प्रभाव किसी भी समय नहीं होता है, ये बात समझना है ठीक से। भगवान को अपने निजी शक्ति से जो धर्म, ज्ञान, त्याग, ऐश्वर्य, तपस्या, विद्या तथा कर्म से युक्त थी, सभी प्रकार की साज सामग्री से, यथा रथ, सारथी, ध्वजा, घोड़े, हाथी, धनुष, ढाल तथा बाण से लैस कर दिया। इस तरह से सुसज्जित लैस होकर शिव जी अपने धनुष बाण द्वारा असुरों से लड़ने के लिए रथ पर आसीन हो गए, बैठ गए। कितना, देखिए, जीवन में यदि आपको ये सब अर्जन करना है, प्राप्त करना है, तो जीवन में तपस्या बहुत होना चाहिए। बिना तपस्या के आपके जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता है। आज की तपस्या ये है, यदि आप वैष्णव संत हैं, भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपका आज का तपस्या है कि 3:30 बजे बिस्तर को त्याग दो। आज के युग में सबसे बड़ी तपस्या है 3 बजे उठना। 3:30 बजे बिस्तर को त्याग करके, इसका मतलब कि 3:30 बजे बिस्तर को त्यागना होगा तो आपको 9 बजे लाइट बंद कर देना होगा। रात्रि में 9 बजे सो जाना चाहिए सभी को। यदि आप जीवन में तपस्या या कुछ ऐसा ख्याति अर्जन करना चाहते हैं तो आपको ऐसे करना चाहिए। मंगला आरती में अपने शरीर को साफ करके, तिलक से आभूषित करके और प्रभु के सामने आकर के डंडे के जैसा इसको गिरा दो, पटक दो, प्रभु इस शरीर को मैं आपके पास लाया हूं, ये आपका संभला है, भगवान को इस शरीर को अर्पित कर दीजिए। कुछ गीत गाइए, एकादशी व्रत कर लीजिए, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, कृष्ण गौर पूर्णिमा है, अनेक प्रकार के हमारे आचार्यों का भी कभी कभी डिसअप्रियंस डे होता है, कभी कभी अप्रियंस डे होता है, इन सबको ठीक से पालन करना चाहिए। इससे बहुत ताकत, बहुत शक्ति मिलता है आपको कीर्तन भजन में, भगवत प्राप्ति करने में बहुत ताकत मिलता है। अब सभी अपने संभाल करके, सारे अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के भगवान शिव रथ पर आसीन हो गए। लेकिन एक बात समझना है कि भगवान अपने निजी शक्ति के द्वारा ये सब कुछ प्रदान किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, अब कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, परम शक्तिशाली शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और दोपहर के समय असुरों के 3 आवासों में अग्नि लगाकर उन्हें नष्ट कर लिया। भगवान शिव का जो अवतार है, आविर्भाव है, जो इस प्रकट्य है उनका, वो असुरों का विनाश करने के लिए है। भगवान शिव संहार कर लेते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं, देवी दुंदु भयो निर्भी मानसा शंक संकला देवर्षि पितृ सिद्धेश जयति कुसु मोकरै। तब आकाश में अपने अपने विमानों में आसीन ऊंच लोकों के निवासियों ने दुंदुंभियां बजाई, जैसे देवताओं, ऋषियों, पितरों, सिद्धों तथा विविध महापुरुषों ने शिव जी के ऊपर पुष्प वर्षा की और जय जयकार की। अप्सराएं परम प्रमुदित होकर नाचने गाने लगी। असुर का जब विनाश हुआ, असुर जब मारा गया, तो सभी देवता लोगों ने, जितने सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, ऋषि महर्षि देवर्षि हैं, सब पितरलोक भी है, यहाँ से पितरलोक ऊपर है, पितरलोक के लोग भी भगवान शिव के ऊपर वर्षा किया। जितने अप्सराएं थे, जिनमें जो कला था, जो गुण था, उस गुण को भगवान शिव के सामने प्रस्तुत किया। आप हम सबको भी जो हम में प्रभु ने गुण दिया है, जो कला दिया है, उस कला को भगवान के सामने जरूर इसको प्रस्तुत करना चाहिए। हर व्यक्ति को बढ़िया करताल बजाने आना चाहिए। जितने देवता लोग हैं, सभी लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से भगवान को प्रसन्न करते हैं। मीरा जी ने नृत्य करके भगवान को खुश किया। नारद जी निरंतर अपने वीणा पर हाथ रखते हैं और प्रभु के गुणगान गाते चलते हैं। कहीं भी जा सकते हैं नारद जी, केवल भगवान के नाम के प्रभाव के कारण। भगवान शिव से पूछा गया कि आपका सबसे प्रिय सूत्र, सबसे प्रिय तत्व क्या है? भगवान शिव ने कहा, नाम जप के अलावा इस संसार में, आपने कथा सुनी होगी, जब सती को मोह हो गया था, राम जब ऐसे रूप में आए थे तो मोहित हो गई थी, सीता के वियोग में प्रभु ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नयनी। एक मनुष्य के भांति, एक अज्ञ के भांति राम जी पशु से, पक्षु से, मृग से, वृक्षों से भी पूछ रहे हैं। अब ऐसे लीला देख के कौन न घबरा जाए, आदि मोहित न हो जाए। भगवान शिव के साथ सती जी रहती थीं और सती जी के मन में भ्रम हो गया। यदि मन में थोड़ी भी भक्ति के प्रति श्रद्धा कम हुआ, श्रद्धाहीन हुए, भगवान उसी समय लुप्त हो जाते हैं और माया देवी प्रकट हो जाती हैं। आ जा बेटा मेरे पास, अब मैं समझाता हूं भगवान के विषय, अब मैं समझाऊंगा। कृष्ण भूली जीव भोगवंचा करे, निकट अष्ट माया तार झापाटिया, जबरदस्ती पकड़ लेती है वो। सती जी शिव जी के साथ रहती थी, अरे भगवान के साथ रहने वालों को भी मोह हो जाता है। भगवान के साथ रहने वाला व्यक्ति भी मोहित हो जाता है, ऐसे कई एक उदाहरण है शास्त्र में। संत के साथ रहने वाला भी भ्रमित हो जाता है। बड़ी सावधानी की जरूरत है भक्ति मार्ग में। सती जी को मोह हो गया, अज्ञान के सागर में डूबने लगी। सती जी ने सोचा कि ये राम हो ही नहीं सकता है। कथा इस प्रकार से था कि त्रेता का युग था और कुंभज ऋषि के पास भगवान शिव जाकर के कथा सुन करके आ रहे थे। आज जो कुंभज ऋषि ने कथा बताई थी वो कथा वर्तमान था, भगवान लीला में थे, भगवान स्टेज पर अभिनय कर रहे थे। हमारे प्रभु जब स्टेज पर अभिनय करते हैं, स्टेज पर आकर के जब लीला करते हैं, तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सूर्य विद्वान भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान हो ही नहीं सकता है। आज भगवान श्री राम स्टेज पर रहे थे, अभिनय क्या था कि सीता जी को हरण हो गया है, असुर ने चुरा लिया है और प्रभु ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और यही बात सती जी को लग गया और जो कथा वर्तमान थी वो कथा चलते चलते रास्ता में भगवान शिव ने राम जी का दर्शन किया और हे परब्रह्म कह करके भगवान शिव चरणों में लपट गए। लिपट करके प्रभु ने उनको प्रणाम किया और भगवान को देख देख करके भगवान शिव को आंख से पानी निकल रहा है, गला रुक रहा है, उनके शरीर में रोमांचित हो रहा है, गला कंप रहा है। यह दशा देख करके भगवान शिव का सती ने कही, आप किसको प्रणाम किया आपने? बोले, देवी वो प्रभु है ना, अभी तो कथा सुन के आई थी आप। कौन प्रभु? सती जी कहती है, कौन प्रभु? बोले कि अभी तो कुंभज ऋषि ने कथा बताई थी, ये कथा तो वर्तमान चल रही है, देवी प्रणाम करो। बोले नहीं नहीं, मैं दक्ष पुत्री हूं, मैं सभी जगह प्रणाम नहीं कर सकती हूं, मन में अहंकार है ना बहुत, दक्ष के पुत्री हूं मैं। भगवान शिव ने कहा कि सती, तुमने बहुत भूल किया प्रभु को प्रणाम न करके, आज तुम चूक गई, बहुत भूल हुआ तुमसे। भगवान शिव प्रभु के दर्शन के आनंद के सागर में डूबते आगे आगे चलते हैं, सती जी पीछे से भी चल रही हैं। सती जी के मन में भ्रम हुआ है। सती जी कहते हैं कि हमारे पति भी समर्थ हैं, महाभागवत हैं, ये झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वो क्या करूं मैं जो अपने आंखों से देखी थी, वो रो रहा था जिसको ये ब्रह्म कहते हैं। सती जी बट शंकर जी बट वृक्ष के पास बैठ गए और बैठ करके प्रभु के नाम का आश्रय लिया और प्रार्थना किया कि हे प्रभु, सती के मन को भी ठीक कीजिए आप। और जप करने लगे, हरे कृष्णा सती जी के मन में उद्वेग है। प्रभु के देखने के बाद, दर्शन करने के बाद भी मन में शांति ना आए, इसका मतलब कि भौतिक संसार हमारे हृदय में बहुत बड़ा घर बना चुका है, बहुत बड़ा जगह बना चुका है। भगवान शिव को दया आई। भगवान शिव ने कहा कि यदि आपका भ्रम नहीं मिटता है तो जाओ ना परीक्षण कर लो। जैसी आज्ञा प्रभु आपकी। और सती जी जाती हैं, राम जी तो लीला में थे ही। भगवान शिव ने सोचा कि लगता है कि प्रभु अपने लीला में सती को भी शामिल करना चाहते हैं, अब ये भी इसमें भाग लेना चाहती है। अब बिना प्रभु के कृपा के बिना ऐसी लीला में प्रवेश करना बड़ा दुष्कर है, नहीं हो सकता है। जैसे तुम्हारा मन करता उसे परीक्षण लो और अस कहीं लगे जप हरि नामा, इतना कह करके प्रभु नाम जप करने लगे। सीता ने क्या भूल किया, राम जी आ रहे थे सामने से, तो सती जी ने सोचा कि परीक्षण कैसे करूं मैं। तो सती ने क्या किया कि सती कीन सीता कर वेशा, सती जी ने सीता का वेश बना लिया कि यदि राम होंगे प्रभु होंगे तो वे तो समदर्शी हैं, पहचान लेंगे, और यदि नहीं पहचान पाएंगे, कोई नर होंगे मनुष्य होंगे तो फिर मेरे पास आएंगे, हमारे समदर्शी प्रभु। राघवेंद्र सरकार ने दूर से ही लखन से कहा, लखन ये माता देवी सती क्या कर रही हैं, ये ऐसा क्यों रूप बना रही हैं। भगवान एक मिनट में समझ गए, वहां पर रास्ते मार्ग में आ रहे थे, आते आते सती बैठी हैं सीता बन करके, और प्रभु ने पूछा माँ आप अकेले जंगल में कैसे घूम रही हैं, भूतनाथ प्रभु शिव कहाँ हैं, आप जानती हैं यह हरि सीता बैदेही यही मेरी जानकी का हरण हो चुका है, आपको अकेले नहीं घूमना चाहिए। सीता सती कहते मन में इतना 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 मन भारी हुआ, इतना मन में खराब लगा, पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया, जब आंख खोला तो क्या देखती हैं कि राम लक्ष्मण सीता ये तीनों कभी अलग हुए ही नहीं, जानकी जी भी साथ में हैं। फिर आंख बंद किया, फिर आंख बंद के खोला तो फिर प्रभु ने वही लीला दिखा लिया, वो ऐसा ही रो रहे थे। और सती जी वहां से मन में विशाल लेकर के, हृदय में विशाल भर के, विशाल के सागर में डूबते हुए शंकर जी के पास चली गई। भगवान शिव तो समाधि में थे, और समाधि से जब उनका नींद खुला, आंख खुली, तो सती जी बैठी हैं। सती जी से प्रभु ने बड़ी सहजता से पूछा, सती जी ने पूछा, शंकर जी ने पूछा, देवी आप आ गई, आपने प्रभु को कैसे समझा, हमारे प्रभु को आपने कैसे पहचान लिया, हमें भी वो सूत्र बताओ, मैं भी पहचानूं उस भाव से। सती ने वहां अपने पति से झूठ बोला और कहा कि कछु न परीक्षा ली न गोसाई, मैं कोई परीक्षण नहीं किया, कोई उनका ऐसा नहीं बात किया। भगवान शिव ने ध्यान में देखा, और ध्यान में देख करके देखा कि सती ने तो सीता का रूप बनाया, और सीता तो मेरी माँ है, यदि इसके साथ मैं संबंध रखता हूँ तो मेरी संस्कृति और धर्म पर बड़ा आघात होगा। और शिव जी ने संकल्प किया कि आज के बाद सती से भेंट नहीं होगा। और वही सती जी जब यज्ञशाला में गई अपने पिता का, तो पति के वियोग में जब उनका भाग नहीं दिया गया, वो भी एक अलग कथा है, भाग नहीं दिया गया था, तो सती जी ने पति के निंदा को सहन नहीं कर पाई और यज्ञशाला में शरीर को दे दिया। आप सोचो समझो थोड़ा कि भगवान से विमुख होने से क्या नहीं हो सकता है। भगवान से जीव यदि विमुख हो जाए, हट जाए, सबन तोड़ ले, संसार में कौन उसको पूछेगा। आइए लंबा हो जाएगा, अगला श्लोक पढ़ते हैं। सभी देवता लोगों ने वो किया है। एवं दग्ध्वा पुरस्तित पुरस्तत्रो भगवान पुरहा नृप ब्रह्मदीभिषु यमाना स्वयं धाम प्रत्याद्यत। हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार शिव जी त्रिपुरारी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने असुरों की तीनों पुरियों को भस्म कर दिया था। ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं से पूजित होकर शिव जी अपने धाम लौट गए। असुरों का तीनों पुर यानी गांव जलाने के बाद, असुरों को नष्ट करने के बाद, भगवान शिव का एक नाम है त्रिपुरारी, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा था। अब इसमें केवल अनुवाद है, श्लोक नहीं, श्लोक तात्पर्य नहीं है। यद्यपि भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से अनेक असामान्य तथा आश्चर्यजनक लीलाओं संपन्न की। उन महान संत पुरुषों द्वारा जो कुछ कहा जा चुका है, भला मैं उससे और अधिक क्या कह सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अधिकृत स्रोत से भगवान के कार्यकलापों का श्रवण मात्र से शुद्ध हो सकता है। भगवान का जो लीला है, भगवान आते हैं मनुष्य धारी बनकर के आते हैं, जब शरीर धारण करते हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को कि भगवान है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन भगवान सामान्य कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान जब भी किसी भी वेश में आते हैं तो असामान्य कार्य करते हैं। भगवान हमारे सोच से, हमारे बुद्धि से परे भगवान कार्य करते हैं, असामान्य बात, असामान्य कार्य कर लेते हैं प्रभु। आप देखिए, भगवान छोटे से छोटे बन जाते हैं, बड़े से बड़े बन जाते हैं। जब इस जगत में सृष्टि नहीं थी, प्रलय हो चुका था, ब्रह्मा जी को प्रभु ने भेज दिया था सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि यहाँ तो जल ही जल है, मैं सृष्टि कहाँ करूं। बैठ करके आसन से ध्यान लगाए थे और ध्यान लगाते लगाते ऐसे सोचने लगे सृष्टि के विषय में ब्रह्मा जी के नाक से छींक आई, और छींक करते ही एक चने के बराबर ब्राह का बच्चा निकला, और ब्रह्मा जी को देखते देखते पृथ्वी से भी बड़ा हो गया। हो ब्राह भगवान का अवतार हुआ, तो ब्राह भगवान ब्रह्मा जी के नाक से भी निकल सकते हैं, कहीं से भी, कोई भी असामान्य कार्य करते हैं प्रभु। इसलिए भगवान के इस गुणों का गान करने से, ठीक से श्रवण करने से, कीर्तन करने से, जो भी आप कीर्तन करते हो यानी जप करते हो, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। हम कीर्तन कर रहे हैं ना भगवान का, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। श्रवण मात्र से, कीर्तन मात्र से जीव शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है जीव। इसलिए हमें इसका निरंतर करना चाहिए। भगवान के कार्यकलापों के श्रवण मात्र से शुद्ध हो सकता है। थोड़ा तात्पर्य है, यदि आप लोग कहें तो मैं पढ़ लूं। खत्म है ये आज का अध्याय। भूख तो नहीं लगी आप लोगों को बहुत, पर थोड़ा सा है, बिल्कुल मैं जल्दी तेज पढ़ूंगा। भगवद गीता तथा अन्य समस्त वैदिक वांग में पूरी तरह बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मानव समाज में सामान्य व्यक्ति के रूप में, सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वे विश्व भर के कल्याण के लिए असामान्य कार्य करते हैं। मनुष्य को माया के वशीभूत होकर कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं माना जाता है, कि कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, वासुदेव सर्वेति, किंतु ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। फिर भी यदि कोई संपूर्ण भगवद गीता यथा रूप पढ़े तो कृष्ण को सरलता से समझा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त विश्व को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कृष्ण से परिचित कराने के लिए प्रयत्नशील है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यदि लोग इस आंदोलन को गंभीरतापूर्वक स्वीकार करें तो उनका मानव जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के सत्रहवें स्कंध के अंतर्गत भक्त शिरोमणि प्रहलाद नवम नामक दसवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होगा। धन्यवाद। कृष्ण कॉन्शियस को यानी कृष्ण भावना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जहां रहो वहीं खूब प्रचार कीजिए। श्री प्रभुपाद जी महाराज की, चैतन्य महाप्रभु की, आप सब की।